ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। सम्मेलन स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया।
ब्राजील में काफी अरसों से बसे भारतीय मूल के लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। एस्ट्रोलाइट नाम के ब्राजीलियन गायकों ने ओम उच्चारण और तिरंगा फैलाते हुए मोदी मोदी की गूंज के साथ भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, रियो डी जेनेरो, ब्राजील।
सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक व्यवस्था में सुधार करना और संतुलित तथा समावेशी वैश्विक शासन को बढ़ावा देना है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। दो दिन के सम्मेलन के बाद श्री मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया भी जाएंगे। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ कार्यनीतिक संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान दोनों देश कार्यनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मेले के साथ सार्थक चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देश वाणिज्य और व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और औषधि सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा कार्यनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री ने भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार के लिए अर्जेंटीना के सहयोग का अनुरोध किया। सस्ती और क्वालिटी दवाएं बनाने के अपने काबिलियत की बात रखकर भारत ने अर्जेंटीना से आसान आयात नियमों का अनुरोध किया। इस पर अर्जेंटीना ने कहा कि USFDA या यूरोपियन EMA स्वीकृत दवाइयों को अर्जेंटीना में आयात करने की अनुमति होगी। ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर सहयोग पर भी खास जोर रहा। स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग, ड्रोन के विविध उपयोग एवं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन की मेजबानी रक्षा लेखा विभाग DAD करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इन सत्रों में प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए रणनीतिक सहयोग के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करने में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की उभरती भूमिका को तलाशा जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी समितियों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में एक समारोह में श्री शाह ने ये बात कही।
दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। 36 लाख बहने गुजरात में और 20 लाख बहने देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1,00,000 करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में 1300 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थीं। श्री नड्डा ने कहा कि आज देश की स्वास्थ्य नीति उपचारात्मक उपचार से निवारक उपचार की ओर बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बन रहे आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर आज केरल पहुंचे। वो कल सुबह गुरुवायूर मंदिर भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति एर्नाकुलम के कल्लमसेरी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।